22 मार्च दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। ब्रसेल्स में दो बड़े धमाके, हवाई अड्डे और मेट्रो के पास 30 से अधिक लोगों की मौत। बात करेंगे घटना की कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से।
I walked through a mess, a load of stuff, glass splinters, smoke, water dripping from the ceiling.
और कश्मीर श्रृंखला में आज देखेंगे पृथकतावाद के दौरान नष्ट किए गए कश्मीरी पंडितों के मंदिरों का क्या हाल है।
क्या है कि जब हम वहाँ रहते थे तो उस मोहल्ले में सिर्फ एक घर था कश्मीरी पंडितों का, वो था हमारा। बाकी जो हमारे आसपास इर्द गिर्द रहते थे, पड़ोसी थे, वो सब मुसलमान थे। तो यहाँ पे सभी कश्मीरी पंडित ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जो अपनी जगह मुझे वहाँ फील होता था ना वो।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में 3 बम विस्फोटों में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं, दर्जनों घायल हुए हैं, पूरे शहर को बंद कर दिया गया है। ज़ाविंटम हवाई अड्डे पर 2 विस्फोट हुए, 1 घंटे बाद शहर की अंडरग्राउंड मेट्रो में विस्फोट हुआ। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि उनके देश को कायरतापूर्ण हमलों का निशाना बनाया गया है। बेल्जियम ने खतरे का स्तर अधिकतम घोषित कर दिया है। ब्रसेल्स में सेना तैनात कर दी गई है, लोगों को हिदायत दी गई है कि वो जहां हैं वहीं रहें। ब्रसेल्स में ज़ाविंटम हवाई अड्डे समेत सभी सार्वजनिक परिवहन बंद कर दिया गया है और परमाणु ऊर्जा केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्रसेल्स में हुए चरमपंथी हमलों के बाद यूरोपीय देश सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर रहे हैं। फ्रांस के गृह मंत्री बर्नार काजनोव ने घोषणा की है कि अहम परिवहन केंद्रों और सीमाओं पर 16,000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन हमलों से जाहिर होता है कि चरमपंथ से लड़ने के लिए देशों के बीच और अधिक तालमेल और संवाद की जरूरत है। जर्मनी और नीदरलैंड्स भी सीमाओं पर नाके बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन भी सीमा पर अतिरिक्त गश्ती दल तैनात कर रहा है। आंग सान सूची नए मंत्रालय में 4 मंत्रालयों विदेशी मामलात, शिक्षा, विद्युत और ऊर्जा का पदभार संभालेंगी। उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी म्यांमार में भारी बहुमत से जीती थी। म्यांमार के कानून निर्माताओं ने उनकी नियुक्ति का स्वागत किया। विधिवेत्ता कोको नाइंग ने कहा, जनता ने उन्हीं के लिए वोट दिया था क्योंकि वो उनका समर्थन करते हैं। अब जिसका वे समर्थन करते हैं वो सरकार में होंगी, हमारे लोगों को ये अच्छा लगेगा। ये थे कोको नाइंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच प्रवासी संकट को हल करने के लिए हुए समझौते के विरोध में ग्रीस में अपना बहुत सा काम स्थगित कर दिया है। इस समझौते के तहत ग्रीस में आने वाले जितने प्रवासियों को तुर्की वापस लेगा, यूरोपीय संघ उतनी संख्या में सीरियाई शरणार्थियों को अपने यहाँ बसाएगा। लेकिन यूएन शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फिलिपो ग्रांडी का कहना है कि किसी भी शरणार्थी को उसकी इच्छा के खिलाफ स्वदेश नहीं भेजना चाहिए। एजेंसी का यह भी कहना है कि शरणार्थियों के लिए बनाए गए अगवानी केंद्र अब कारावास केंद्र बन गए हैं। इंडोनेशिया के हजारों टैक्सी चालकों ने इंटरनेट आधारित ट्रांसपोर्ट ऐप्स के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि इन एप्लीकेशंस के कारण उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। राजधानी जकार्ता में जनजीवन पर इस विरोध प्रदर्शन का काफी असर पड़ा। ग्रैब और उबर जैसी मोबाइल ऐप्स से एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी परिवहन उद्योग प्रभावित हुआ है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। सबसे पहले बेल्जियम से बड़ी खबर। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आज सुबह एक धमाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दूसरा धमाका मेट्रो के पास हुआ। इन धमाकों में 30 से अधिक लोगों के अभी तक मारे जाने की खबर है, जबकि 35 अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन धमाकों के असर से यह हुआ कि भारत में भी सभी हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया है कि वो ब्रसेल्स में भारतीय राजदूत मनजीव पुरी से संपर्क बनाए हुए हैं और उन्होंने सूचित किया है कि हमले में किसी भारतीय के मारे जाने की अब तक की कोई खबर नहीं है। खबरें आ रही हैं कि हवाई अड्डे को खाली करके सील कर दिया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट से जुड़ी ट्रेन सेवाएं भी फिलहाल रोक दी गई हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ अमर शर्मा।
ब्रसेल्स में सुबह करीब 8 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां कुछ देर और घूमी होंगी कि ज़ेवेंटेम हवाई अड्डे पर प्रस्थान क्षेत्र में ब्रसेल्स एयरलाइंस और अमरीकी एयरलाइन की डेस्क पर एक जोरदार धमाका हुआ। इसके तुरंत बाद स्टारबक्स के बाहर दूसरा धमाका हुआ। धमाकों की आवाज से वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। इमारत से धुआं उठ रहा था, धूल उड़ने लगी, वहां भगदड़ मचने लगी। एयरपोर्ट के कर्मचारी ने लोगों से अपील की कि वे अपने सामान एयरपोर्ट पर ही छोड़ दें और जगह को खाली कर दें।
अपना लगेज और सामान मत लीजिए, सब कुछ यहीं छोड़ दीजिए, अपने साथ मत ले जाइए।
बेलगा समाचार एजेंसी ने कहा है कि धमाके से पहले फायरिंग हुई थी और अरबी भाषा में कुछ लोग बोलते हुए सुने गए थे। घटना स्थल की तस्वीरों में टूटी खिड़कियां और मलबे से अटे पड़े फर्श दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी के एक यात्री हैंस क्लोसे ने एयरपोर्ट के मंजर को कुछ इस तरह बयां किया।
I walked through a mess, a load of stuff, glass splinters, smoke, water dripping from the ceiling. We had to walk.
चीजें वहां बेतरतीब पड़ी थीं और मैं उनके बीच से गुजर रहा था। चारों तरफ सामान और कांच के टुकड़े बिखरे थे, धुआं सा उठ रहा था और छत से पानी टपक रहा था।
जेनेवा से एक फ्लाइट से आए जैक माउजाउन ने कहा कि ये भयानक था। छत गिर पड़ी थी, हर तरफ खून दिखाई दे रहा था, हर तरफ जख्मी लोग थे, सामान बिखरा पड़ा था। हम लोग मलबे में चल रहे थे, ये एक युद्ध जैसा नजारा था। एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया और एयरपोर्ट के इलाके में सायरन की आवाज गूंजने लगी, जिससे हवाओं में बढ़ती बेचैनी महसूस होने लगी। योएल रोसेनबर्ग ब्रसेल्स में टैक्सी चलाते हैं। योएल रोसेनबर्ग के साथ ही उस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे जब वहां धमाके हुए थे। रोसेनबर्ग ने बताया,
सुबह 8 बजे मेरा एक दोस्त एयरपोर्ट के प्रस्थान हॉल के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसने एक छोटे धमाके की आवाज सुनी और उसके चारों तरफ धूल उड़ने लगी। वो वहां से तुरंत भागने लगा। उसके 10 या 15 सेकंड बाद ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे एयरपोर्ट के बाहर लगे सभी शीशे टूट गए। वो जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग निकला। उसके बाद टर्मिनल में मौजूद सभी लोग भागने लगे।
एयरपोर्ट में धमाकों के एक घंटे बाद ही सुबह 9 बजे, जब मुसाफिरों की भीड़ ज्यादा होती है, माइलबीक मेट्रो स्टेशन में एक विस्फोट हुआ। तस्वीरों में स्टेशन के मुख्य द्वार से धुआं उठता दिख रहा था। माइलबीक मेट्रो स्टेशन के नजदीक आई लोई मेट्रो स्टेशन पर मौजूद आयन मैकफर्टी ने बताया कि मेट्रो की सुरंग से एक तेज आवाज सुनाई पड़ी थी। बहुत ज्यादा धुआं और धूल उठने लगा। हालांकि वहां मौजूद सैनिकों ने जल्द ही मेट्रो की इमारत को खाली करा दिया। इसके बाद तो लोग घटनास्थल से भागने लगे और जोर जोर से चीख कर रोने लगे। ये थे आयन मैकफर्टी के शब्द। माइलबीक मेट्रो स्टेशन को धमाके के फौरन बाद बंद कर दिया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर हुआ धमाका एक आत्मघाती हमला था। उन्होंने कहा कि उनके देश पर एक कायराना हमला हुआ है। चार्ल्स मिशेल ने देशवासियों से इस खतरे से निपटने के लिए एक साथ आने की अपील की है।
Vous indiquez que dans ce moment de tragédie, dans ce moment noir pour notre pays,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक दुखद पल से गुजर रहे हैं। हमारे देश के लिए ये एक काला दिन है। मैं आप सभी को पहले से कहीं अधिक शांति बनाए रखने और एकजुटता दिखाने की अपील करूंगा। हम एक मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं। हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देकर और एकजुट होकर।
ये थे चार्ल्स मिशेल के शब्द। ज़ेवेंटेम हवाई अड्डा ब्रसेल्स के उत्तर पूर्व में स्थित है और पिछले साल 2,30,00,000 लोगों ने यहाँ सफर किया था। धमाकों के बाद सभी उड़ानों का मार्ग बदल दिया गया है। एयरपोर्ट और सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये धमाके पिछले साल नवम्बर में पेरिस में हुए चरमपंथी हमले के एक हमलावर सालेह अब्देसलाम के बेल्जियम में गिरफ्तारी के सिर्फ 4 दिनों बाद हुए हैं। इन धमाकों के बाद ब्रिटेन और फ्रांस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्रसेल्स की राजधानी में ही यूरोपियन परिषद का मुख्यालय है। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि घृणा और हिंसा को बढ़ाने की दिशा में चरमपंथियों ने एक और हमला किया है।
ब्रसेल्स में धमाके, मरने वालों की संख्या 31 हुई। इस समय ये धमाके हुए ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट की संवाददाता शैलोट मैकडोनल्ड गिब्सन वहां उतरी ही थी। उन्होंने बीबीसी को बताया कि चारों तरफ अफरा तफरी थी और हवाई अड्डे के कार्यकर्ताओं को पता नहीं चल रहा था कि उन्हें क्या करना है।
I'd just come through security and had sat down to have some breakfast मैं सिक्योरिटी से निकलकर नाश्ता करने के लिए बैठी ही थी कि एकदम से हवाई अड्डे और रेस्तरां के कर्मचारी दौड़े हुए आए और चिल्लाकर कहने लगे हर कोई बाहर निकले। हमें टर्मिनल के एक हॉल में ले जाया गया जहां बाहर निकलने के रास्ते थे। लाउडस्पीकर पर बाहर निकलने के आदेश तो आ रहे थे लेकिन स्टाफ को पता नहीं था कि उन्हें करना क्या है। मैंने एक को कहते सुना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तभी एक दूसरी उद्घोषणा हुई आप वहीं बने रहें जहां आप खड़े हुए हैं। मैंने एक कर्मचारी से बात की उसने कहा यही सबसे सुरक्षित जगह है। धमाके निचले तल पर हुए हैं। ताज़ा उद्घोषणा ये हुई है कि हम टर्मिनल भी खाली कर दें। यहाँ से हर किसी को निकाला जा चुका है जिसमें मैं भी शामिल हूँ।
ये थी इंडिपेंडेंट अखबार की संवाददाता शैलोट गिब्सन। मैंने थोड़ी देर पहले ब्रसेल्स फोन कर एक निजी एयरलाइंस की ग्राउंड स्टाफ से बात की जो ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर यात्रियों की देखभाल की जिम्मेदारी निभा रही थी।
डिपार्चर हॉल में हुआ ये इजलास। हम अंदर थे इमिग्रेशन और सिक्योरिटी के बाद अनाउंसमेंट एयरपोर्ट में हो रही थी एंड एवरीबॉडी वर रनिंग। जहाँ पे ब्लास्ट हुई थी मैं नहीं थी, वहाँ पे वेयर द इंसिडेंट टुक प्लेस वहाँ पे मैं नहीं थी, पर अंदर जहाँ सिक्योरिटी के बाद जो पैसेंजर्स आ रहे थे उसको सभी सिक्योरिटी एरिया के अंदर वी वर टेलिंग देम टू गो टुवर्ड्स द सिक्योरिटी एरिया। जहाँ पे सिक्योरिटी है वहाँ पे सब पैसेंजर्स को भेज रहे थे। हम सभी कंट्रोल में है। अभी 8 बजे शुरू हुई थी इमरजेंसी कॉल और अब लोकल टाइम है 11:30 एंड सब पैसेंजर्स को सिक्योर एरिया में लेके जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन और मदर्स विद बेबीज को इम्पोर्टेंस दे जा रहे हैं और सब पैसेंजर्स को भी इम्पोर्टेंस दे जा रहे हैं। यहाँ पे सब लोग पैसेंजर्स यहाँ है 2,000-3,000 से ज्यादा पैसेंजर्स है यहाँ पे, उनके बीच में खड़े हुए हम सबके क्वेश्चंस आंसर करते हुए। अभी बसेस आए हुए हैं सबको लेके जा रहे हैं। अभी पैसेंजर्स को और एक जगह पे जहाँ उस जगह पे जगह के नाम है जैवेंटम, छोटा सा शहर है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं सिक्योर एरिया में सब पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं।
सबसे पहले आपसे क्षमा चाहते हैं खराब टेलीफोन लाइन के लिए, लेकिन जिस तरह का माहौल वहां था बेहतर टेलीफोन लाइन के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता था। हमने संपर्क किया संजय भारती से भी जो न्यूयॉर्क से मुंबई आ रहे थे और अपना विमान बदलने के लिए ब्रसेल्स में रुके थे। मैंने उनसे पूछा कि घटना के समय आप कहाँ थे।
मैं न्यूयॉर्क से आया था और मेरी मुंबई की फ्लाइट थी। यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पे थे तब हमारे को इन्फॉर्मेशन आई कि हम लोग को एयरपोर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि कुछ बम एक्सप्लोजन हुए थे एयरपोर्ट पे लॉन्च के पास में और उसके बाद सिटी में भी 2 एक्सप्लोजन हुए और सब लोग को ये बाहर लिया एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट खाली कर दिया गया और अभी किसी को भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं कि कहाँ ले जाएंगे, बट ये सबको सेफ प्लेस पे ले जा रहे हैं। उसके बाद सबको बसेस से ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके बाद कल मॉर्निंग तक शायद एयरपोर्ट बंद है और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो लेटर ऑन ही पता चलेगा। अभी तो इन लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सबको सेफ जगह पहुंचाएं। हमको एयरपोर्ट से बिल्कुल बाहर कर दिया था और शायद डेड बॉडीज भी वो तो दूसरी प्लेस पे थी। क्रू भी हेल्पलेस है क्योंकि किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ओनली द गवर्नमेंट बॉडीज दे आर हेल्पिंग। सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी क्योंकि स्टिल द अटैक्स आर गोइंग ऑन। इनको खुद को ही क्लियर नहीं है कि सेफ प्लेस कौन सी है क्योंकि सिटी में भी अटैक हुआ है, कुछ शूट आउट्स भी हुए हैं। मैंने तो पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर दिया था मेरी वाइफ को। सब लोग सेफ हैं ऐसे, आई डोंट थिंक एनी इंडियन कोई हुआ है इंजर्ड है कुछ, एवरीबॉडी इज सेफ।
ये थे ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर भारतीय यात्री संजय भारती जो मुंबई में अपनी पत्नी पूजा भारती से संपर्क कर अपनी खैरियत की सूचना देना चाह रहे थे लेकिन उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था उनसे। अगर वो हमें सुन रही हों तो उन्हें बता दें कि उनके पति संजय भारती ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोयल सरकार ब्रसेल्स से 30 किलोमीटर दूर दुआलानोव में शोध कर रही है। मैंने उनसे पूछा कि जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थी।
मैं तो एक्चुअली मेरे फ्लैट में थी, मेरे घर पे थी और इट वाज मॉर्निंग। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड रह रही है जिसका फ्लाइट आज था नॉर्वे जाने का, तो शी वाज चेकिंग हर फ्लाइट स्टेटस। तो अचानक से उसको पता चला कि ऐसा एक हुआ है सुबह 8 बजे के आसपास। तो मेरा फ्लाइट कल है तो मैं भी तुरंत न्यूज चलाने लगी। तो टीवी में एक्चुअली फुल ऑन डिटेल्स न्यूज पता चला। तो फिर मैं अपने ऑफिस में आई हूँ अभी और ऑफिस में भी स्टेटस चेक कर रही हूँ। तो मेरे कुछ कोलीग जो है ब्रसेल्स से यहाँ पे आते हैं तो वो लोग भी सब अपने आप में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे थे फेसबुक में, ऑफिस के साइट में कि हाउ इज एवरीवन। सो सो फार सो नाउ, अभी तक तो सब सेफ। ऑफिशियली तो यहाँ पे सारे ट्रेन, बसेस, मेट्रो सब कुछ बंद है, आज के लिए सब कुछ सस्पेंडेड है। मेरे यूनिवर्सिटी में एकदम एवरीबॉडी इज वेरी, अभी तो एकदम स्केरी वाला माहौल है। और यूनिवर्सिटी में काफी सारे स्टूडेंट्स जो अब्रॉड से आते हैं, तो एवरीवन इज अ लिटिल स्केर्ड। यूनिवर्सिटी में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इधर उधर है, सब कुछ सस्पेंडेड है, सिर्फ क्लासेस चल रही है। और ब्रसल्स में सारी यूनिवर्सिटीज बंद है, तो यूनिवर्सिटी के जो डीन है वो कंटिन्यूसली हम लोग को मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि प्लीज स्टे सेफ, प्लीज डोंट गेट आउट ऑफ योर हाउस। ये है इन्फॉर्मेशन।
ये थी बेल्जियम में शोध कर रही भारतीय छात्रा कोयल सरकार। ब्रसल्स में हुए इस हमले में कुछ दिन पहले पेरिस में हुए हमले की छाप दिखाई देती है। पिछले दिनों इस बात पर चर्चा होती रही है कि ब्रसल्स चरमपंथी गतिविधियों की नर्सरी बनता जा रहा है। हमारे साथी संदीप सोनी ने रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन से संपर्क किया और पूछा कि ब्रसल्स ही बार बार चरमपंथियों के निशाने पर क्यों आ रहा है।
एक तो इसको शायद उस गिरफ्तारी के साथ जोड़ करके देखना चाहिए जो आज से चंद दिन पहले हुई, उस व्यक्ति की जो पेरिस के हमलों में मुलव्वस था और उसको जिंदा गिरफ्तार किया गया, और वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, और इस तरीके से जताया जा रहा था कि उसकी गिरफ्तारी के बाद और तफ्तीश के बाद जो बहुत सारा जो नेटवर्क है इस्लामिक स्टेट का या बाकी और तंजीमों का, उसको ध्वस्त करने में काफी मदद मिलेगी।
आप जिक्र कर रहे थे सालेह अब्दुल सलाम का, जिन्हें चार दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है। उन्हें पेरिस पर जो पिछले साल चरमपंथी हमले हुए थे उसका मुख्य अभियुक्त माना जाता है,
लेकिन उसके एवज में ऐसा लगता है कि जो आतंकवादी गुट है उन्होंने अपनी जो उनकी कैपेसिटी है और जो रीच है उसकी शायद एक डेमोन्स्ट्रेशन दी है, और इतनी जल्दी उस गिरफ्तारी के बाद इस तरीके का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हमला इस तरीके से लॉन्च करना, मेरे ख्याल इससे बहुत ज्यादा खतरे की घंटियां बजनी चाहिए।
ब्रसल्स धमाके की जो गूंज है यूरोप में कहां तक सुनाई देगी, और अब चरमपंथ के खिलाफ किस तरह की पॉलिसी जो भी बनेगी उसमें ये धमाके और ये पूरा घटनाक्रम क्या भूमिका अदा करेगा?
जो सरकारी तंत्र है उनके लिए मेरे ख्याल अब ये लाजमी हो जाएगा कि जिस तरीके की कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग की जरूरत है, जिस तरीके की सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग की जरूरत है, और उसमें फिर वो बहुत सारे सवालात खड़े होंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी या जो सिविल लिबर्टीज हैं उस पर या प्राइवेसी के जो लॉज हैं उस पर कहीं सेंध ना लगे। दूसरी तरफ यूरोप के अंदर एक जो बहुत बड़ा सवाल उठ करके खड़ा होगा वो ये है कि जिस तरीके की पॉलिसीज फॉलो की गई मल्टीकल्चरलिज्म की या लिबरलिज्म की, क्या वो आतंकवाद के साए में सरवाइव कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। हमको नजर आ रहा है राइट विंग पार्टीज की ग्रोथ में सारे के सारे यूरोप में, और फाइनली मेरे ख्याल एक इस चीज के ऊपर उनको दोबारा से तवज्जो देना पड़ेगी, वो ये है कि जो ये सारी की सारी रिफ्यूजी क्राइसिस आ रहा है उसको कैसे हैंडल किया जाए।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को बेल्जियम जाने वाले हैं, ऐसा कार्यक्रम है। आपको लगता है कि इस कार्यक्रम पर कुछ असर पड़ेगा ब्रसल्स धमाके का?
जिस तरीके की वो ब्रसल्स में एक सुनने में आ रहा था कि भारतीय समुदाय को भी उन्होंने संबोधित करना था, और वो जिस तरीके की एक राजमटाज और ग्लिटर होता है उन सारी सेरेमनीज का, मैं खैर उस पर तो डेफिनेटली ये असर पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि भारत और ईयू के बीच में बहुत सारे मुद्दे आपस में डिस्कस होंगे, लेकिन मेरे ख्याल अब शायद आतंकवाद का मुद्दा जो है वो भी एक बहुत अहम मुद्दा बनकर के उभरेगा।
सुशांत सरीन से बात कर रहे थे संदीप सोनी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर में राजनीतिक सस्पेंस खत्म होता दिखाई देता है। पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की उत्तराधिकारी और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद बताया कि वो बीजेपी के समर्थन से सरकार गठित करने पर राजी हैं, लेकिन वो ये निर्णय पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ बातचीत के बाद लेंगी। राज्य में 2.5 महीने तक राष्ट्रपति शासन के बाद सरकार बनने की आशा एक बार फिर जगी है। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
2.5 महीने तक बीजेपी और पीडीपी के बीच गलतफहमियों की जो बर्फ जमी थी वो आज उस वक्त पिघलती दिखाई दी जब पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट वार्ता के बाद इशारा दिया कि वो राज्य में भाजपा के समर्थन से ही सरकार बनाएंगी।
प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत ही पॉजिटिव हमारी आज की मीटिंग रही। इट वॉज यू नो अ वेरी पॉजिटिव मीटिंग और पिछले जो 2-3 महीने से थोड़ा सा स्टेलमेट वगैरह चल रहा था तो आज मैं
महबूबा ने अपनी पार्टी के 27 विधायकों और 3 सांसदों की बैठक कल श्रीनगर में बुलाई है। इसी बैठक में ये तय होगा कि नई सरकार कब और किन शर्तों पर बनेगी, लेकिन अब तकरीबन ये तय है कि महबूबा मुफ्ती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं।
और मैं किसी भी सूरत में नहीं चाहूंगी कि जैसे हम कश्मीरियों पे इल्जाम लगा रहता है कि ये शायद अपनी बात के पक्के नहीं है। मेरे वालिद अपनी बात के पक्के थे, मैं भी उनकी बात के पक्की हूँ, मगर जहाँ उन्होंने एक अलायंस जोड़ा, एक रिश्ता जोड़ा बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, वहाँ एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना है। कुछ हमने आपस में एक प्रोग्राम तय किया है जिसमें पेशरफ्त की जरूरत है। जिस वक्त वो पेशरफ्त होगी तो इंशाल्लाह जो मुफ्ती साहब का जो मकसद है, जो मुद्दा है, मैं उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ूंगी।
पिछले दिनों जब आरएसएस के नेता राम माधव ने महबूबा मुफ्ती की शर्तें मानने से साफ इनकार करते हुए कहा कि सरकार का गठित होना अब असंभव है, तो महबूबा वापस लौटी और पार्टी कार्यकर्ताओं से दोबारा सलाह मशवरा करना शुरू किया। कल अचानक वो दोबारा दिल्ली चली गईं और आज नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद सरकार बनने की आशा फिर से जगी है। महबूबा मुफ्ती पिछले 2 महीने से कहती रही हैं कि प्रधानमंत्री गठबंधन समझौते को लागू करने का खुद आश्वासन दें तो वो आगे बढ़ेंगी। इस समझौते में पाकिस्तान और अलगाववादियों के साथ बातचीत, पनबिजली योजनाओं को राज्य को लौटाने और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने की बातें हैं। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
और अब कश्मीर पर हमारी विशेष श्रृंखला। जब 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो उसके बाद उनके मंदिरों की देखभाल करने वाला घाटी में कोई न बचा। कुछ हजार बचे खुचे पंडित भी इतने खौफजदा थे कि वो अपनी जान की सुरक्षा के लिए अधिक चिंतित थे। एक अंदाजे के मुताबिक 70-80 मंदिरों को या तो पूरी तरह से तोड़ डाला गया या उनके कुछ हिस्सों में आग लगा दी गई या कुछ पर अवैध कब्जा कर लिया गया। लेकिन धीरे धीरे जब मिलिटेंसी का जोर कम होने लगा तो पंडितों और उनकी निजी संस्थाओं ने मंदिरों की मरम्मत करवाने का बीड़ा उठाया और अवैध कब्जों से उन्हें छुटकारा दिलाया। ज़ुबैर अहमद की कश्मीर पर दूसरी कड़ी में सुनिए अब मंदिरों का वहां क्या हाल है।
ठीक से ये तो बोल्ड हो गया एक ही बोल में। बेटे तुम्हारा नाम क्या है?
माय नेम इज संबोध कुमार तिक्कू।
अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
7th क्लास।
नाम क्या है तुम्हारा?
धीरज कोल।
तू मेरा भाई है। अब तुम्हारा नाम क्या है?
दिया कोल।
दिया कोल, तुम लोग भाई बहन हो?
हाँ।
हीरो कौन है क्रिकेट में?
एमएस धोनी।
ये है क्रिकेट के दीवाने टिक्कू परिवार के बच्चे। श्रीनगर के एक गुंजान आबादी वाले इलाके में संजय टिक्कू का खानदान कश्मीरी पंडितों के केवल 2 परिवारों में से एक है। लेकिन 1990 में मिलिटेंसी शुरू होने के बाद कश्मीरी पंडितों के पलायन से पहले इस गली में काफ़ी पंडित रहा करते थे, जैसा कि संजय टिक्कू से बातचीत के दौरान हमें पता चला।
ये पहले पंडितों के घर थे, अब वो बहुत सारी इनमें से सब जलाए गए थे, तो इन्होंने फिर नए बनाए, उनसे परचेज करके, उनकी जमीन परचेज करके।
तो यहाँ सामने आपके घर के सामने ये,
हाँ जी,
ये पंडित का था?
ये भी पंडित का था।
उसके अगल बगल में
उसके सारे 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 ये सारे पंडित,
ये अब सारे मुसलमानों के।
उन दिनों जबरदस्त खौफ का माहौल तारी था। संजय टिक्कू आज भी वो वक्त भूल नहीं सके हैं।
सन्नाटा ऐसा हुआ करता था कि अगर बिल्ली भी हमारे ऊपर वाले मंजिल में चल रही होती तो हमें ये लग रहा था कि आ गए वो मिलिटेंट, आ गए तो वो हमें मार डाल देंगे। जबरदस्त खौफ का माहौल था।
संजय टिक्कू उन बचे खुचे कश्मीरी हिंदुओं में से हैं जो घाटी छोड़कर नहीं गए। आज घाटी में कश्मीरी हिंदुओं को ढूंढना भूसे में सुई तलाश करने जैसा है। एक अंदाजे के मुताबिक फिलहाल वादी में कश्मीरी हिंदुओं की आबादी 3-5 हज़ार के करीब है, जो 185 अलग अलग जगहों पर आबाद हैं। घाटी की आबादी 70 लाख के करीब है। संजय टिक्कू को आसानी से ढूंढा जा सकता है क्योंकि वो एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन श्रीनगर से 68 किलोमीटर दूर कुलगाम के भट्ट परिवार को ढूंढना आसान नहीं। मोहनलाल भट्ट अपने परिवार के साथ अधिकतर पंडितों की तरह एक गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो अब एक शांत वातावरण में रहते हैं, लेकिन कश्मीर में बच गए अन्य पंडित परिवारों की तरह हिंसा शुरू होने के बाद वो एक कठिन दौर से गुजरे थे।
यहाँ पे उसका मुझे नाम नहीं है, यहाँ पे एक गांव है पंडितों का, वहाँ भी 8 घर मारे थे। रात दिन भर मैं रहता था ऊपर, पुराना मेरा जो मकान था मतलब उसमें ऊपर वाले छत में मैं जागता रहा कि कब हमें ब्लास्ट करेंगे या क्या करेंगे या मेरे बच्चों को कब मारेंगे।
जो कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर नहीं भागे उनके अलग अलग कारण थे, गुर्बत उसमें सबसे बड़ा कारण था, लेकिन मोहनलाल भट्ट के फरार न होने के पीछे कुछ और ही कारण था।
मैं शिव शंकर भोलेनाथ का बाबा भोलेनाथ का शंकर, इस बाबे का मैं अपनी जान दे सकता हूँ इस बाबे के लिए, मैं इसलिए रह रहा हूँ यहाँ।
मोहनलाल भट्ट के 2 बेटों में से एक की मृत्यु कई साल पहले एक बम धमाके में हो गई। दूसरा बेटा बेरोजगार है, बेटी की शादी हो चुकी है, परिवार अब सुखी है, लेकिन गुर्बत और गुमनामी ने अब तक उनका साथ नहीं छोड़ा है। पैसों की कमी है लेकिन घर अपना है। कश्मीरी पंडित कहते हैं उनके बच्चों की शिक्षा भी एक बड़ी समस्या है। कुमारी रोमीजी गंजू 28 वर्ष की हैं, उनकी बेटी 3 साल की है। वो कहती हैं वो अपनी बच्ची को जम्मू भेजना चाहती हैं।
वहाँ मैंने सोचा था मैं उस वहाँ पे हमारे एक स्कूल है सामने ही, तो मैंने सोचा अगर मैं वहाँ भेजूँगी तो वहाँ पर थोड़ा अरबिक ज़्यादा है, लैंग्वेज बुरी है थोड़ी, तो इसलिए मैं नहीं भेज सकी। उस पे बहस हो गई, थोड़ी बहुत बहस हो गई घर में स्कूल की वजह से कि स्कूल कहाँ पे जाना
है। बच्चे जा नहीं रहे अभी
कहीं? नहीं, घर में ही है, एक साथ खत्म हो गया इसका।
मुस्लिम बच्चों से अड़ोस पड़ोस के बच्चे इस उम्र के खेलते हैं आपस में?
हाँ खेलते हैं, उस प्रॉब्लम नहीं है, खेलते हैं।
तू का साया है या इलाहा इल्लल्लाह, यार मुझको आया है।
हजरत बल के निकट कुछ लड़कियों ने हमें एक इस्लामिक गान सुनाते हुए कहा इस गान को उन्हें उनके स्कूल में सिखाया गया है। मनोज पंडिता एक पुलिस अफसर भी हैं और लेखक भी। उन्होंने कश्मीर की समस्या पर उर्दू में एक उपन्यास लिखा है। वो कहते हैं शिक्षा इतनी बड़ी समस्या नहीं है।
जो जैसे बाहर के स्कूल हैं तो वहाँ पे वंदना होती है सवेरे, क्या मुस्लिम लोग वंदना नहीं पढ़ते हैं वहाँ पे? मैं यहाँ पे था तो मैं यहाँ दीनयात के पूरे, इनफैक्ट मैं तो क्लास में सबसे, मुझे कभी भी कुछ भी पूछते थे मुस्लिम्स के बारे में मुझे एकदम याद होता था, मजहब का अमल दखल तब भी था। अच्छा क्रिश्चियन स्कूलों में क्या वो नहीं पढ़ाते हैं?
लेकिन कश्मीरी पंडितों को दूसरी और कई समस्याओं का सामना है। मंदिरों में पूजा पाठ हो या शादियों और मृत्यु के अवसर पर रीति रिवाज, घाटी में पुजारी नहीं मिलते, खास मौकों पर पुजारियों को जम्मू से बुलाया जाता है, शादियों में भी दिक्कतें आ रही हैं। पत्रकार मनोहर लाल गामी एक उर्दू अखबार में काम करने वाले अकेले हिंदू हैं और वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपना घर जरूर छोड़ा मगर घाटी नहीं। वो 1998 में अपने गांव से पलायन करके श्रीनगर आकर बस गए। वो केंद्रीय सरकार के बनाए हुए उन घरों में से एक में रहते हैं जो कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए गए हैं।
एक्चुअली अजीब बात है, ये फितरत इंसानी है कि क्या है कि जब हम वहाँ रहते थे तो उस मोहल्ले में सिर्फ एक घर था कश्मीरी पंडितों का, वो था हमारा। बाकी जो हमारे आस पास इर्द गिर्द रहते थे, पड़ोसी थे, वो सब मुसलमान थे। तो यहाँ पर सभी कश्मीरी पंडित ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जो अपनी जगह मुझे वहाँ फील होता था ना, वो अपनापन, जो भी दुख थे सुख थे वो अपने लगते थे। यहाँ पे कुछ डिस्कनेक्ट सा हो गया हूँ अपने इमोशंस के साथ।
मनोहर लाल गामी के विचार में उनकी कम संख्या होने के कारण स्थानीय कश्मीरी हिंदू वोट बैंक नहीं बन सकते और इसीलिए उनकी अहमियत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि सांस्कृतिक एतबार से कश्मीरी पंडित स्थानीय मुसलमानों से एक बार फिर घुल मिल गए हैं और पुराने घाव लगभग भर चुके हैं। ज़ुबैर अहमद, BBC श्रीनगर।
इस रिपोर्ट को आप दोबारा सुन सकते हैं कल सुबह नमस्कार भारत में। और अब कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में 3 बम विस्फोटों में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं। बेल्जियम ने खतरे का स्तर अधिकतम घोषित कर दिया है। ब्रसल्स में सेना तैनात कर दी गई है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो जहां हैं वहीं रहें। ब्रसल्स में हुए चरमपंथी हमलों के बाद यूरोपीय देश सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर रहे हैं। म्यांमार में आंग सान सूची नए मंत्रालय में 4 मंत्रालयों विदेशी मामलात, शिक्षा, विद्युत और ऊर्जा का पदभार संभालेंगी। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच हुए समझौते के विरोध में ग्रीस में अपना बहुत सा काम स्थगित कर दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की राजेश चौहान ने, रेहान फदल को अनुमति दीजिए। सभी साथियों के साथ नमस्कार।